ओम शांति। आज का टॉपिक है काम इन क्राइसिस, मतलब शांत कैसे रहना है संकटों में, विपरीत परिस्थितियों में। तो इस टॉपिक की शुरुआत एक शॉर्ट एक्टिविटी से करेंगे। आपको याद होगा जब हमने मुरली मेथड्स किया था तो उसमें एक मेथड था माइम मेथड, माइम माइमिंग पेंटोमाइम मेथड, दम शराड्स, मतलब बिना बोले करके दिखाना है और बाकी सब एक्टिविटी करके दिखाना है और बाकी सब बताएंगे कि क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर आठ चीज़ें हैं, यहाँ पर आठ एक्टिविटी है या आठ सिचुएशन है, छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज है ये। तो हम इनको बांटेंगे आपके बीच में और उन लोगों को आके ये करके दिखाना है। ये करते समय आपको ये ध्यान देना है कि हमारे विचार कैसे थे, हमारे संकल्प, हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस कैसे थे ये करते समय, जो ये करेगा माइंड। और बाकी जो बैठे हुए, हाँ वो भी पूछेंगे आपको। और जो सामने वाले इनको देख रहे हैं उनको भी देखना है कि ये जो एक्टिविटी है इसमें हमारे संकल्प, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस कैसे हैं, समझा? ओके तो तीन तीन जो ये स्लिप मिलेगी उसको देख के आपको यहाँ पे आके माइम करना है, बताना है करके, बाकी सब बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो। करते समय आपको ध्यान देना है कि मेरे मन की स्थिति क्या थी ये करते टाइम। मतलब ये नहीं आंसर चाहिए हमको कि बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत फन था, ये नहीं है। बहुत डीप रिफ्लेक्शन है इसमें कि अंदर अपने आप को झांक के देखना कि ये जब मैं करता हूँ तब कैसा है मेरा, स्थिति कैसा है मेरा, इमोशंस मेरे, फीलिंग्स कैसे हैं। और जो हम सामने वाले देखेंगे इनको, हमको भी यही देखना है कि मेरे थॉट्स, मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कैसे हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी के बाद फिर हम टॉपिक पर कुछ बोलेंगे। तो तीन तीन लोगों में एक स्लिप बांट दे, आठ है हमारे पास। आप तीन लोग एक करेंगे, अपनी दिखाना नहीं है किसी को, नहीं आप देख लेंगे ना फिर। क्या कर रहे हैं, कुछ और करके दिखाओ, इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा।
हाँ, इसमें जो है ना, हम अपना बेड को ठीक किए, उस पे बेड शीट डाल दिए, बस
इसमें था कि एक आप सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं। इन लोगों समझ लिया।
ओके नेक्स्ट। क्या समझा इन्होंने?
समझा मैं, आप शाम के समय बैठे हैं और पानी को देख रहे हैं।
अभी आप लोग आओ, आप लोग आओ। ऐसा तो था ही नहीं, क्यों मारेंगे? सी 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 सी, देखो एक्टिविटी देखो।
बोला साहब ने पहचाना, हम सुपरमार्केट में गए थे मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो उसने पैसे ज्यादा मांगे इसलिए उसको मार रहे थे हम।
नेक्स्ट। जिम जिम, आ जाओ आ जाओ, बताओ।
ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज।
चलो नेक्स्ट, बोलना नहीं है।
अच्छा क्रिकेट,
ये लो बोल दो, मंजू मैन बोल दो।
क्रिकेट, ये वर्ल्ड कप
टेलीविजन पर वर्ल्ड कप में भारत को देख रहे हैं।
वो टीम को देख रहे हैं जो जिसको आप सपोर्ट करते हो, अब जरूरी नहीं वो जीत रही है। चलो लास्ट ग्रुप, आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बोलो क्या कर रहे हो। चलो बता दो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हो गया, इन लोगों ने पहचाना नहीं।
बताया था कि 50 जन खाना खाने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाना है, तो हम खाना बना रहे थे, नीचे जो आग जला दिया, ऊपर से हमने बर्तन रखा और जला दिया बस।
अब उनको करके दिखाना चाहिए था,
कान में आके बताया था ना।
अब बताइए, इन सारी एक्टिविटीज में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जो करने में डिफिकल्ट थी? मतलब जो भी हमने एक्टिविटी दी, कोई क्राइसिस नहीं थी, है ना, सब नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज थी हमारी। लेकिन जब हम ये एक्टिविटी करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, तो हमारी उस समय क्या संकल्प रहते हमारे, हमारे विचार, हमारे इमोशंस कैसे रहते? जैसे ये लास्ट एक्टिविटी थी उसमें था 50 लोगों के लिए आपको भोजन बना रहा है, तो उस टाइम पे हमारे संकल्प, हमारे विचार कैसे रहते? डेली भी हम जब करते हैं उस टाइम पर कैसे रहते हैं? या तो फिर अगर हम सुपरमार्केट में गए, बिजी सुपरमार्केट में जा रहे हैं और वहां से शॉपिंग कर रहे हैं, फिर एक व्यक्ति बैठा है कंप्यूटर पर, है ना, ये देखा, उस टाइम पे क्या विचार थे जो खरीदने वाले थे? वो जल्दी आए, ये बिजी था, तो हम जो जो लेने जा रहे हैं वो मिलना चाहिए, ढूंढना पड़ रहा है सुपर, जो हाँ बिलिंग में क्यों होता है, तो ऐसा लगता है फटाफट करके जाना चाहिए, ये नॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन थोड़ी सी हमको इरिटेशन होती है उसमें। और हाँ संडे में तो और बिजी होता है मॉल्स, और लाइन लगी रहती है, और जो कंप्यूटर पे आपका बैठा हुआ व्यक्ति कैसे मुंह बना रहा था, हाँ तो उसका मुंह खराब देख के हमारी स्थिति को क्या होता है। और कौन सी एक्टिविटी थी? हाँ बेड मेकिंग, ये एक्टिविटी कैसी लगी? ये एक्टिविटी में मन की स्थिति अच्छी होती है, जाके सोना है, बट किसी के लिए अगर बहुत टाइम हो गया है और सफाई वाले आए नहीं है, उसको खुद करना पड़ रहा है, डेली एक्टिविटी है, तो कैसी रहेंगी स्थिति? रंबल करता रहेगा। नक्की के पास जा रहे हैं और बैठे थे बेंच पे और पानी देख रहे थे, तब कैसे संकल्प थे? पीस। और अगर कुछ हुआ है आज दिन भर में और अब ना नक्की पे जाएंगे चक्कर लगाने के लिए, हाँ, और ना टेलीविजन पर देख रहे थे जो जो टीम को आप सपोर्ट कर रहे, इन लोगों ने तो ऐसे करके दिखाया कि वो टीम जीत रही है, लेकिन जब वो टीम ठीक से नहीं खेल रही है तो हमको क्या होता है? कई लोग टीवी फोड़ देते हैं, है ना, पॉजिटिव सोचना है, अंत समय तक पॉजिटिव सोचना है। अब समझने की ये कोशिश करिए कि जिस एक्टिविटी को हम करते हैं दिन भर में, जिस इंटेंशन से हम करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जिस स्मृति से हम करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरी स्मृति ठीक नहीं है, अगर मेरा इंटेंशन ठीक नहीं है, तो जैसे कि बेंच पे बैठ के इतना अच्छा एनवायरमेंट में सूर्य देखते हुए भी मुझे हलचल होगी अंदर कि मुझे नेक्स्ट करना है। जैसे दूसरी एक एक्टिविटी थी, जिम में जाके साइकिलिंग कर रहे और ट्रेडमिल पे भाग रहे, है ना, लेकिन अगर मन में हलचल है कि फिनिश करके जाना है, इसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, तो मतलब मेरी स्थिति शांत वाली नहीं है। जैसे कि किसी के लिए भोजन बना रहे, अगर हमको ऐसा लगता है कि हम प्यार से बाबा की याद में भोजन बनाएंगे, तो हम सैलेड भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, भोजन भी परफेक्ट टाइम पे तैयार होगा, लेकिन मुझे ऐसा है कि करना है, जल्दी जल्दी करना है, बाप रे अभी क्या होगा, है ना, तो उस टाइम पर हलचल वाली स्थिति। अब जैसे सुपरमार्केट जा रहे, अगर मैं इंजॉय करते हुए उसको करूँ उस एक्टिविटी को, तो मुझे बहुत मजा आएगा कि संडे आज चलो, है ना, सारा शॉपिंग करके आते। तो ये जो एक्टिविटीज थी ये तो नॉर्मल थी। अब टॉपिक था काम इन क्राइसिस। पहले तो अपने आप को चेक करना है कि हम डेली एक्टिविटी में कितना काम रहते, कितना पीसफुल रहते, कितना शांत रहते। अब जैसे क्राइसिस शब्द सुनते हैं तो उसका अर्थ है संकट, है ना, कोई प्रॉब्लम, कोई बड़ी इंटेंस सिचुएशन, उसको कहते हैं क्राइसिस। अब उसमें कैसे शांत रहना, तो हमने कुछ परिस्थितियां निकाली, जैसे कि क्राइसिस सिचुएशन क्या होगी, किसी की डेथ, अगर हमारा ही कोई नियर एंड डियर वन है जिसकी डेथ हो जाए, जिससे हम बहुत क्लोज है, चाहे वो इस परिवार का हो या लौकिक परिवार का हो, जो हमारे लिए निमित्त आत्मा है, और वही चली जाए, तो तब हमारे लिए क्राइसिस होता है कि हम किसको अप्रोच करेंगे, उससे हमारा अटैचमेंट होगा। सेकंड, अगर जैसे कि कोई हमारे पर बहुत एलिगेशंस कर रहा है, हमारे कैरेक्टर के ऊपर कुछ बोल रहा है, हमारे बारे में कुछ कुछ बोल रहा है, और हमको धमकी दी जा रही है कि आपको यहाँ से निकाल देंगे, क्राइसिस सिचुएशन है ये, है ना, संकट है ये कि अब नेक्स्ट क्या। फिर जैसे कि अभी कुछ लोगों से हमने सुना, यहाँ पे हम सब कुछ छोड़ के आ गए थे, अब हमारी रिटायरमेंट की एज आ गई है, अब हमको कह रहे हैं कि वापस जाओ, हम तो पूरा बाबा पे भरोसा करके यहाँ पर आए थे, अब हम वापस जाएंगे, लेकिन इतने सालों में हमने कोई तैयारी नहीं की कि हम यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले हैं। तो है ना संकट उस आत्मा के लिए कि अब 70 इयर्स के हो गए, अब उस दुनिया में जाके क्या करना है। क्राइसिस किसी का हम सबको अपने डिपार्टमेंट से बहुत अटैचमेंट होता है, बहुत सालों तक हम एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हमको कह रहे हैं कि अब तुमको इसके अंडर काम करना है, तुम्हारा डिपार्टमेंट कल से चेंज। संकट, अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी को बहुत बड़ी बीमारी का डायग्नोसिस हो गया जिसका शायद ट्रीटमेंट ही नहीं है, कैसे विचार चलेंगे हमारे लिए, है ना। क्राइसिस एनवायरमेंटल, प्रकृति को लेके, जैसे अभी इस साल बारिश नहीं हुई माउंट में, हम सबको कहा गया है पानी की बचत करो, हफ्ते में 2 बार पानी दे रहे हैं, शायद नेक्स्ट ईयर बारिश ना हो वापस, तो नेक्स्ट ईयर क्या करने वाले। अगर हमसे कहा गया चलो 1 साल के लिए अभी घर जाओ, क्या करेंगे अभी। संकट, 1 साल के लिए क्राइसिस होगी। जैसे बीच में आपको याद है बहुत साल 2-3 साल पहले बहुत जोर से बारिश गिरी थी तो वो बड़ा सा रॉक नीचे गिर गया है ना, तो सारी जो सुविधाएं थी वो नहीं आ रही थी, ऊपर दूध नहीं आ रहा था, सब्जी नहीं, हम सबके लिए तो प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमारे पास स्टॉक था, लेकिन बाहर माउंट के लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये भी एक संकट है। ऐसे ही आने वाली कुछ सालों में ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा, जैसे बहुत स्मॉल एग्जांपल, हम मोबाइल मुरली ऐप पे मोबाइल मुरली पढ़ते हैं रोज, लेकिन बंद हो गया वो, तो हलचल नेटवर्क प्रॉब्लम तो है ना। हाँ, तो इंटेंशन याद करेंगे पुरानी, यानी कि स्मृति क्या है मेरी, मेरी अंदर से क्या संकल्प चल रहा है, तभी ही मैं काम रहूंगा क्राइसिस में भी। नेक्स्ट है कि आपको कहीं सेवा के लिए बुलाया गया, आपने 1 मंथ बहुत प्रिपरेशन की कि मैं ये क्लास ऐसा करूंगा, या मुझे किधर सिंगिंग के लिए जाना है तो मैं ऐसे करूंगा, मैंने प्रॉपर कपड़े खरीदे, बहुत तैयारी की, वहां पहुंचने के बाद आपको कहा आपका कैंसिल कर दिया गया, आप दूसरे को इमोशनल ब्रेकडाउन, एकदम इमोशनली हम ब्रेक हो जाएंगे। ओबेसिटी, बहुत हम देख रहे हम मोटे होते जा रहे, दूसरे एकदम कम होते जा रहे, इसके बाद आगे और बीमारियां होंगी, तो अब क्या क्या करें इसके लिए, सामने वाले का वेट कम हो रहा है हमारा ही नहीं कम हो रहा। दूसरी है फायर इन बिल्डिंग, तो जैसे कि अगर आग लग गई, अगर ये जैसे कि इन्वायरमेंटल है, आग लग गई, जैसे अभी हॉस्पिटल में हम लोगों को सिखाया जा रहा है कि अगर आग लग गई तो रेड कोड, तैयारी की जा रही है, अगर ये तैयारी ही ना हो, हाँ हर डिपार्टमेंट में वो लोग जाके सिखा रहे कि अगर आईसीयू में हुआ तो क्या करना है, ओपीडी में हुआ तो क्या करना है, ओपीडी के इस तरफ हुआ तो क्या करना है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा है, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करना है ना। तो जब वो संकट आएगा तो प्रिपेयर्डनेस है, नहीं तो वो क्राइसिस है कि कैसे भागेंगे वहां से। अभी अव्यक्त मास आ रहा है, किसी ने बहुत अच्छे से अपने माइंड में प्रिपेयर करके रखा है कि मैं अव्यक्त मास में ये करूंगा, ऐसे योग करूंगा, इतनी मुरली पढ़ूंगा, पांडव भवन में जाके बैठूंगा, इधर करूंगा उधर करूंगा, और 1 हफ्ता पहले ही एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर के फ्रैक्चर हो गए, हाँ बेड पे, अब उसके लिए बहुत इमोशनल ट्रॉमा है ये, तो वो क्या करे। तो बहुत सारी ऐसी क्राइसिस है इसमें, और भी अपने अपने आप को देखना और क्या क्राइसिस जीवन में आ सकती है। तो हम इस चीज को पढ़ रहे थे तो नासा का जो फ्लाइट डायरेक्टर है पॉल हिल, एक बार ऐसे हुआ था कि स्पेसक्राफ्ट में कुछ आइस जमा हो रही थी और उनका वो शटल फेल होने वाला था, तो बहुत शॉक में पैनिक में गए वो लोग कि अभी नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या। फिर उसके बाद टेक्निकल चीज़ें लिखी थी उसमें कि फिर उन्होंने वार्म किया और कूलिंग सिस्टम पे काम किया और वो बच गया। उसके बाद पॉल हिल को लगा कि ऐसा तो बहुत बार होगा, तो इस पैनिक सिचुएशन में, इस क्राइसिस में हमको क्या करना चाहिए। तो उसने कुछ प्रश्न बनाए कि जब भी परिस्थिति आती है तो पहले तो सोचो कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकंड स्टेप उसने सोचा कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, ये परिस्थिति आई है या किसी का व्यवहार मेरे साथ ऐसा है या प्रकृति ऐसे ऐसा कुछ हो रहा है, तो सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है। थर्ड उसने बोला कि अब मैं इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे निकालूं। उसने एक बहुत अच्छी बात बोली, जैसे बाबा हमेशा कहता है कि नथिंग न्यू, तो वो कहता है अपने आप को बोलो कि ये मैंने पहले भी पास कर चुका हूँ, नथिंग न्यू, मैं इसको वापस पास करूंगा, और फिर स्टेप्स ले कि कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि मैं सेफ रहूं। तो ये उसने अपने उस स्पेस शटल्स के लिए डिजाइन किया था। ऐसे ही जो एथलीट्स होते हैं जो स्पेस में काम करते हैं, इनको बहुत प्रेशर के अंडर खेलना पड़ता है क्योंकि ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, तो उनको भी सिखाया जाता है कि कैसे काम रहे। तो जैसे अगर बाहर बारिश गिर रही है तो हम छाता खोलते हैं या अम्ब्रेला पहनेंगे, अम्ब्रेला खोलते हैं या रेनकोट पहनेंगे, है ना। इसी तरह से इसी तरह से अगर बाहर ठंडी है तो हमने शॉल पहनी है, हमने स्वेटर पहना है। अगर हमारे पास शॉल स्वेटर नहीं है तो भी हमारे लिए क्राइसिस ही है क्योंकि इतनी ठंडी है यहाँ पर, लेकिन अभी हमारे पास है इसलिए हम लोग बहुत नॉर्मली घूम रहे हैं यहाँ पर। हम तो अब स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहला स्टेप सब हम सब ज्ञान जानते हैं कि अगर परिस्थिति आई तो कैसी स्थिति बना के रखनी है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हमने। सबसे पहला है कि डू नॉट रिएक्ट। कोई भी क्राइसिस, कोई भी परिस्थिति प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले कि रिएक्ट नहीं करना है। जैसे बाबा ने आज की मुरली में ही कहा ना कि व्यर्थ संकल्पों के लिए आपके पास कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग पावर कि जो प्रॉब्लम आई है मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगी। अगर मैंने तुरंत रिएक्ट किया तो अंदर की जो मेरी शांति वो खत्म है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि उदास हो जाते, दिल शिकस्त हो जाते, खुशी गायब हो जाती है आपकी। तो सबसे पहले है कि सिचुएशन से डिटैच रहना, साक्षी होके उस प्रॉब्लम को देखना कि क्या चल रहा है ना। कभी किसी और की प्रॉब्लम होती है तो हम कैसे उसको एडवाइस देते, क्योंकि हम साक्षी है उसकी प्रॉब्लम से, इसलिए बहुत अच्छे से उसको एडवाइस देंगे। कोई बात नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ा, सबको जाना होता है, उसको इतनी बीमारी थी, सोचो ना उसको कैंसर था, उसको तो कैंसर था, वो तो इतना तड़प रहा था। आप कैसा बोलते उस टाइम पर, कैसा बोलते हम लोग, है ना। जैसे जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने क्या कहा, दादिया रो रही थी तो बाबा ने कहा कि हाँ ऐसे तो तुम लोग बोलते हो, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, और अब जब तुम्हारी माँ ने शरीर छोड़ा तो तुम लोग रो रहे हो। तो सिचुएशन से डिटैच रहना, साक्षी रहना। सेकेंड एक चीज है रिसाइकलिंग थॉट्स। ये हम वर्कशॉप कराते उसमें पॉजिटिव थॉट्स कैसे करना। आपको याद होगा हैप्पीनेस का जब हमने क्लास करवाया था तो हमने यहाँ पे वो एक्टिविटी की थी। जब भी कोई क्राइसिस आती है हमारे सारे जो संकल्प है बहुत नेगेटिव चल रहे होते है ना, और हमको हमेशा बाबा बताता है कि ड्रामा के पॉइंट्स याद करो, जो भी हो रहा है वह कल्याणकारी है। तो ये सारी पॉइंट उस टाइम पे याद आना, इसीलिए 3 सर्कल ड्रॉ करने ला पेपर पे। ये करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि हमको उस टाइम पे याद ही नहीं आता कि ड्रामा कल्याणकारी है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं आता। इसीलिए बहुत बार नहीं याद आता। 3 सर्कल ड्रॉ करना, पहले सर्कल में लिखना कि क्या नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है मेरी, क्या प्रॉब्लम है मेरी। वो सारे संकल्प लिखने के बाद नेक्स्ट सर्कल में लिखना क्या ज्ञान की पॉइंट यूज करूं, क्या ज्ञान की पॉइंट यूज करूं। सपोज मेरे बारे में कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहा है, तो मैं क्या करूं। जैसे किसी ने कहा था यहाँ पे मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में, है ना, ये बहुत अच्छा लगा था हमको उस टाइम, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में। मुझे क्या करना है मुझे मालूम है ना, तो मैं अपने परमात्मा नशे में रहूं, ना कि ये सुनो कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग तो बोलेंगे ही। जैसे कुछ बुरा हो गया तो बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है। जैसे वो स्टोरी थी कि जो भी आया है वो परिवर्तन होने ही वाला है, दिस शैल ऑल्सो पास, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल वो बदल जाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स उस नेक्स्ट सर्कल में लिखना। अब मेरे पॉजिटिव विचार क्या होंगे, तो रिसाइकलिंग थॉट्स। थर्ड है, हमारी हमेशा आदत होती है ये पूछने की, तो क्या अगर ये हुआ तो क्या, व्हाट इफ, ये नहीं पूछना। क्योंकि जब हम ये पूछते ना, अगर ये पूछते तो हम पूरी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन का आह्वान करते और उसी को विजुलाइज करते। जैसे कि अगर बीमारी हुई, डॉक्टर ने बोला उसका ये इलाज है, लेकिन मैं सोचूं अगर काम नहीं किया तो ट्रीटमेंट तो मेरा ये होगा, आगे जाके मुझे कौन देखेगा, मैं तो बेड रिडन हो जाऊंगी, मैं तो बिस्तर पे ही पड़ी रहूंगी। जब मैं बार बार ये सोचूंगी तो फिर यही होगा, है ना। बाबा कहता है ना, उन्हीं चीजों का आह्वान करो जो हमको हमारी लाइफ में चाहिए, उन चीजों का नहीं। इसलिए व्हाट इफ, अगर ये हुआ तो, ये नहीं पूछना। चौथा पॉइंट आपको याद है, हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी कराई थी, सिक्स थिंकिंग हैड्स, याद है। सिक्स थिंकिंग हैड्स में, वो एक्टिविटी में हमने यही सीखा था कि क्राइसिस जब आएंगी तो ये छह हैड्स को कैसे यूज करना है। किसी को याद है वो छह हैड्स क्या है? प्रकाश भाई, सबसे पहले थी व्हाइट हैड। व्हाइट हैड मतलब जो प्रॉब्लम आई है उसमें क्या फैक्ट्स है, क्या डेटा है मेरे पास, इसके बारे में मैं क्या जानता हूँ। सेकेंड थी रेड हैड, मतलब मेरी गट फीलिंग क्या है इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, क्या इमोशंस हैं। थर्ड थी ब्लैक हैड। ब्लैक हैड मतलब मैं इस सिचुएशन को देख रही हूँ, इसका नेगेटिव आउटकम क्या हो सकता है, पहले से ही दिमाग में पॉसिबिलिटी सोचना कि नेगेटिव आउटकम क्या हो सकता है। फोर्थ हैड थी येल्लो, उसमें था कि ये जो मैं करूंगी इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स क्या हैं, येलो। एंड ग्रीन था, जो भी मैं कर रही हूँ इसमें क्रिएटिविटी कैसे लाऊं, तो ग्रीन। और लास्ट थी ब्लू हैड, मतलब जो भी कंट्रोल, जो भी कर रहे हैं उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए और हम एक्शन लेंगे। तो सिक्स थिंकिंग हैड्स थी, वो भी ऐसी है कि जब क्राइसिस आएंगी लाइफ में तो इसको हम यूज कर सकते हैं एक्टिविटी को। नेक्स्ट एक्टिविटी हमने करी थी आइजनहोवर मैट्रिक्स। आइजनहोवर मैट्रिक्स में भी हमने यही सीखा था कि चार बातें, कि कौन सी चीजें मुझे पहली करनी है, कौन सी चीजें मुझे बाद में करनी है, कौन सी चीजें मुझे डिलीट करनी है, कौन सी चीजें मुझे डेलीगेट करनी है, किसको देनी है। तो जैसे कि अगर हमने सिचुएशन दी थी कि 100 लोग आ रहे हैं आपको भोजन बना रहे, तो आपको किसको क्या काम देना है, कौन सी चीजें बाद में कर सकते हो, कौन सी चीजें पहले करनी है, तो क्राइसिस में आइजनहोवर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं। इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम लोग प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, ना कि सोल्यूशन को। इसीलिए हमेशा हमारा लाइफ में अप्रोच होना चाहिए सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। जो भी प्रॉब्लम आई है उसको डिस्कस करने से उसका निवारण क्या है वो सोच ले, तो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। सेवेंथ एक है जो हम वर्कशॉप में कराते हैं, SOS। SOS यानी कि स्टैंड बैक, ऑब्जर्व और स्टीयरिंग। SOS मेडिसिन में जब हम बोलते हैं ना, तो बोलते हैं ये मेडिसिन तब लेना जब जरूरत पड़ेगी तो। SOS का मीनिंग यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टीयरिंग, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आई है रुको, उसको देखो, रुक जाओ। स्टैंड बैक मतलब रुक जाओ, उसको देखो और फिर एक्शन लो। तुरंत एक्शन नहीं लो, इसके लिए एक कमेंट्री रन करते हम और उसमें पार्टिसिपेंट्स को बोलते कि वही सिचुएशन को अपने सामने लाओ, अब उसको देखो कि आप उस सिचुएशन में क्या कर रहे हो, आपके लोग क्या कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो कि आप वो सिचुएशन को कैसे चाहते हो और आप कैसे एक्ट कर रहे हो, तो SOS। नेक्स्ट है सपोर्ट। कभी कभार होता है कि प्रॉब्लम आती है तो हमको किसी की सपोर्ट लेनी होती है, तो सोर्सेज ऑफ सपोर्ट हमारे क्या है, सबसे बड़ा सपोर्ट हमारा बाबा है, है ना। लेकिन कभी कभार हमको यहाँ पर किसी की जरूरत पड़ती है, तो हमको पता होना चाहिए कि क्राइसिस में अगर मुझे शांत रहना है तो कौन सी आत्मा के पास जाके मैं डिस्कस करूँ, ना कि पूरे ब्राह्मण परिवार के साथ, ना कि पूरे 10 और 20 लोगों के साथ, है ना, तो जिनकी सारी नेगेटिव एनर्जी मुझ पे आएगी। तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा सपोर्ट सिस्टम इस ब्राह्मण लाइफ में बाबा तो है, इसके अलावा और कौन है। हम एक चीज पढ़ रहे थे जिसमें लिखा था 5 fingers ऑफ डॉक्टर्स, उसमें था डेडिकेशन, ऑनेस्टी, कंपैशन, सिंसियरिटी, ऐसे 5 चीजें थी। तो हमने सोचा काम इन क्राइसिस में हम ब्राह्मण आत्माओं के 5 fingers कौन से होंगे। तो सबसे पहले सत्यता। कभी कभार लोगों का बिहेवियर, या लोग हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं, या हमको निकालने की बात कर रहे हैं, या डिपार्टमेंट चेंज करने की बात कर रहे हैं, मैं कितनी सत्य हूँ जब मैं कर रही हूँ कुछ भी, तो सत्यता कितनी है जीवन में और उस पर खड़े उतरना। सेकेंड निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, है ना। आने वाली कुछ सालों में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो हमारे निश्चय की परीक्षा है। बहुत सारे क्राइसिस अभी भी चल रहे और आगे जाके भी होंगे, तो उस टाइम पे मेरे निश्चय की परीक्षा होंगी। तीसरी बात कि मैं विजयी हूँ, जो भी क्राइसिस मेरे सामने आई है मैंने बहुत बार इसको पार किया है और मैं अब भी इसको पार करूंगी और हूँ ही मैं विजयी। तीसरी बात, बाबा ने आज बोला कि आप परमात्मा की संतान हो, तो मैं उस क्षमा के सागर की संतान हूँ, चाहे लोग मेरे साथ कैसा भी करे लेकिन मैं उनको क्षमा ही करूँगी। और पांचवी बात, जैसे आज बाबा ने कहा वरदानी महादानी आत्माएं हो, और आप मूड ऑफ करके कैसे बैठ सकते हो, तो जो भी प्रॉब्लम आएंगी हम इतने बड़े हैं तो हमको उस सिचुएशन में भी देना ही है। तो ये कुछ पॉइंट्स थी। और जैसे बाबा ने आज कहा वो मिकी माउस नहीं बनना है, है ना, तो ये सारी चीजें याद रखते हुए कि उसको खेल समझो, जो भी आया है उसको बचपन का खेल समझो, ना कि उससे घबराओ। और जैसे आज बाबा ने कहा जो कमजोरी है, जो प्रॉब्लम है, वही हमारे मन की रचना है, है ना। तो जैसे बाबा ने कहा बिच्छू टिंडन बनते, फिर अपनी ही कमजोरी अपने को काटती है और शक्तिहीन बनाती है, तो ये नहीं करना है। और लास्ट, जो भी प्रॉब्लम आई है वो सिखाने के लिए आई है, अपॉर्चुनिटी समझना है उसको कि ये आई है सिखाने के लिए, और आज कुछ सीख के ही हम आगे बढ़ेंगे इससे। तो इसी रीति से हम काम इन क्राइसिस रहेंगे। ओम शांति।